चेमा। तो आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ योग, दी सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय का ज्ञान खंड में है। दी योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज पार्ट टू है वो बुक का, और उसमें चैप्टर सिक्स, छठा चैप्टर जो है दी सिंथेसिस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के पथ पे अनेकों अनेकों मार्ग हैं जो मूलतः दो या तीन प्रमुख मार्गों में हम लोग बांट सकते हैं। हर एक मार्ग का अपना एक एंड पॉइंट है या एक अनुभव है, रियलाइजेशन है, पर मूलतः एंड पॉइंट क्या है? ज्ञान का एंड वहां है जहां हम इस सृष्टि के उस स्टेबल आधार को पा लेते हैं, स्थिर आधार को। तो गति प्रकृति है, जब तक हम गतिशील जगत में हैं और गति को पकड़े हुए हैं, तो चाहे वो मन की गति हो या रोज लोग नई नई चीज़ें पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पांडित्य इत्यादि, तो वो ज्ञान नहीं है, वो केवल एक पांडित्य है। और ऑब्वियसली ज्ञान एक स्कॉलरली डिबेट डिस्कशन, ये सब ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की तैयारी भी हो सकती है और ज्ञान का भ्रम भी हो सकता है और बाधा भी हो सकती है। तैयारी इस तरह से होती है कि हमारा मन तैयार होता है इनके माध्यम से, जब ज्ञान हमारे सामने प्रकट हो तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन व्यक्ति अगर पूरे जीवन उसी में घूमता रहे तो वो फिर स्वाभाविक है कि वो एक अपने आप में जो किताबों से पढ़ के जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, नॉट द अल्टीमेट नॉलेज, उसका अपने आप में एक रसा स्वादन आने लगता है। और खासकर जब उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट्स और उसमें आदमी पार्टिसिपेट, एक प्रकार का एक अहंकार भी डेवलप हो सकता है जो हमें वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति में बाधा भी बन सकता है। और एक इल्यूजन भी हो सकता है कि हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इवन जो हम लोग पढ़ते हैं जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी भी ट्रू अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं आती जब तक किसी ना किसी द्वार से हम एक झलक नहीं देख लेते, क्योंकि ये तो इस परिधि में रह के हम कितना भी फेंट लें लेकिन उसकी जो रियल सेंस है वो नहीं समझ आता जब तक हम एक झलक, कहीं ना कहीं पर्दा नहीं खुल जाता, द्वार नहीं खुल जाता और हमको उसका एक दर्शन नहीं मिलता। तो ये सारी श्री अरविंद हमको पहले बता चुके, और उन्होंने साथ में दो मुख्य चीज़ें जो बताई हैं, वो एक कंसंट्रेशन धारणा जो ध्यान में जो ज्ञान में सहायक होती है, और दूसरा रिनन्सिएशन त्याग। ये दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं, या हम कहें कि ज्ञान के पथ पर जो जहाज जा रहा है उसके ये दो डैने हैं, विंग्स हैं। कंसंट्रेशन तब तक, ध्यान धारणा तब तक ठीक से नहीं लगते जब तक हम कई चीज़ों से अटैच्ड हैं, स्वाभाविक है। एक तो वो मन को अशांत रखती हैं, प्राण को अशांत रखती हैं, मन घूमता रहता है नाना प्रकार के विचारों में। और दूसरा कि जब हम किसी ओपिनियन से अटैच होते हैं कि भगवान ऐसा है, संसार ऐसा है, तो ज्ञान, उनका भी ज्ञान नहीं आ सकता क्योंकि हमने अपने मन में एक धारणा बना ली है। तो जब तक ये धारणाएँ रहती हैं पूर्वाग्रह, तब तक हम वास्तव में ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इन पूर्वाग्रहों को शांत करना, प्राण को शांत करना, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है। उसमें एक है रिनन्सिएशन। रिनन्सिएशन स्पष्ट रूप से श्री अरविंद बार बार कहते हैं, संन्यास नहीं त्याग है। संन्यास यानी चीज़ों को छोड़ के चले जाना, ये एक अगेन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि हमने चीज़ों को छोड़ दिया लेकिन मन ने उनको पकड़ा हुआ है। तो मन जब उनको पकड़े रहता है तो क्या करता है, वो उसी वृत्ति को जो उसने मन में अपने रखी है लेकिन बाहर से वो नहीं कर रहा, उसमें वो बाकी सब में देखता है। ये बड़ी भयानक अवस्था होती है कई बार कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई वृत्ति है, मान लीजिए क्रोध की या लस्ट की, कामना की, वासना की, और उसने बाहर से अपने को उसको कंट्रोल किया हुआ है जितना भी जो भी डिग्री में, तो उसने बाहर से किया है और मन उसका साफ नहीं हुआ है, तो वो बाकी सब में इन चीज़ों को देखेगा। तो ये क्योंकि उसके अंदर रियल सेंस में आत्मसंयम नहीं है, निग्रह है, संयम नहीं है, मास्टरी नहीं है। तो इसलिए शेरविंद और श्री कृष्ण दोनों बार बार त्याग की बात करते हैं, संन्यास की नहीं। त्याग यानी आपको अंदर से उसको छोड़ना है, बाहर से आप चीज़ों के बीच में हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता। एक जगह बहुत सुंदर ढंग से माता जी एक जगह बताती हैं, जब किसी ने पूछा लड़के लड़की इत्यादि के बारे में, माँ कहती हैं अगर तुम सच में सही चेतना में जीने लगोगे तो तुम्हें ये स्पष्ट पता हो जाएगा कि ये जो भेद है दोनों के बीच केवल एक बायोलॉजिकल भेद है, मूल रूप से बायोलॉजिकल भेद है, अदरवाइज अगर इनर बींग से तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए वो छोटा सा जो भेद है उसके ऊपर प्रकृति कैसे खेल खेलती है। तो इसलिए त्याग ना कि संन्यास। तो ये सब बैकग्राउंड के बाद आप श्री अरविंद बताते हैं कि अलग अलग पथों पे जब लोग चलते हैं मूलतः ज्ञान क्या है, कैसे इस पर हम लोग, ज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्व को ढूंढना, स्टेबल आधार। तो अभी जिसको हम कहते हैं मैं, वो तो सारे दिन मैं करता रहता है, माने कभी कोई अटक जाता है अपने विचारों में उलझ जाता है तो कहता है मैं ये विचार हूँ, और अगर उसके विचार को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको क्रोध आता है, क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को अपना स्व समझ रहा है और उसमें किसी और तरह के विचार की गुंजाइश नहीं, जितना सीमित स्व होगा उतना अधिक उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। या अपनी किसी कामना से उलझ जाता है, जैसे एक बच्चा उसके लिए रोता है बिलखता है जब तक उसको खिलौना नहीं मिल जाता, तो वो यही समझता है कि यही मैं हूँ, यानी वो चीज़ अगर नहीं मिली तो उसकी उसका जीवन बिखर जाएगा, उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। इस अवस्था में लोग कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना आत्महनन भी कर बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वो उससे आइडेंटिफाई हो गए हैं, या कोई शरीर के साथ ही पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाता है जो अधिकांश लोग करते हैं। इसीलिए ऐसी बातें हम लोग कहते हैं अरे वो बेचारे चले गए और रोने लगते हैं, पहले तो जाने वाला बेचारा नहीं होता है, वो तो बड़े खुशी जा रहा है, उसने तो ये मर्त लोग की सीमाओं को तोड़ दिया है, तो वास्तव में वो तो बेचारा नहीं है, लेकिन बेचारे तो वो लोग हैं जो उस पर डिपेंड करते थे। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पर कुछ लोग डिपेंड करते थे तो उनके लिए पीड़ा का विषय है, या अगर अटैच थे उनके लिए पीड़ा का विषय है, अगर सांत्वना किसी को चाहिए तो उनको चाहिए, ना कि जाने वाले को, क्योंकि वो तो बड़े आराम से जा रहा है, थोड़े दिन के बाद 8-10 दिनों में सब विस्मृत कर जाएगा, भगवान की गोद में सोएगा, नए जीवन की ओर आएगा, तो वो तो कोई दुख का विषय नहीं है। लेकिन शरीर से जब व्यक्ति आइडेंटिफाई होता है तो वो ये ही कहता है अरे पांडे जी बहुत अच्छे थे चले गए। अब पांडे जी कहीं नहीं गए, पांडे जी अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो शरीर को ही समझते हैं स्व है, क्योंकि वो बॉडी से आइडेंटिफाइड है। या हम व्यक्ति जब जीवन में भी है तो शरीर अरे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, ये देखो भगवान ने मुझे क्यों चुना है, ये मैं कौन है, ये शरीर है, आप इससे अलग करके देख सकते हो अपने आप को कि मेरे शरीर को ये पीड़ा हो रही है लेकिन मैं इससे सेपरेट हो सकता हूँ। ये सारी बातें बाद में श्री अरविंद विस्तार में बताएंगे। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्व हम लोग किसी एक सीमित उसमें आइडेंटिफाई कर देते हैं, या तो देह के साथ या फिर प्राणिक ऊर्जाएं। प्राणिक ऊर्जाएं कौन सी हैं? जैसे महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं, पैशंस, आवेग संवेग, इन सब के स्पंदनों की जो एक समझिए कि एनर्जी के नॉट्स होते हैं, ये वो उस एनर्जी के नॉट्स के अंदर हम उलझ जाते हैं, जैसे भंवर जाल है, तो जो भंवर में फंस जाता है वो बाकी वो नहीं देख पाता है कि भाई गंगा है इधर है उधर है, वो तो उसमें फंसा हुआ है, उसमें उलझा हुआ है, गिर रहा है, उसको तो बस एक चीज़ है कि इससे हम कैसे निकलें, या इसके अंदर जो भी हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, तो उसके लिए वो सारा सीमित संसार हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग एनर्जी के किसी गति में उलझ जाते हैं, प्रकृति किसी गति में उसको मैं समझने लगते हैं और उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते हैं। और तीसरा होता है कि कभी कभी उस एनर्जी के नॉट पर मन अपना अधिकार करके उसमें अच्छे से टाइटली बंद कर देता है और कह देता है कि तुम यही हो, तो फिर वो माइंड के किसी थॉट या विचार या कोई विचारधारा उससे हम बहुत बुरी तरह आइडेंटिफाई हो जाते हैं और कहते हैं हम ही ये है। तो ये सब जो स्टेप्स हैं जब तक हम इनमें उलझे हुए तब तक हम स्व को नहीं जानते, तब तक हम हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो अब फिर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान इसके परे जाना होता है। तो इसके लिए अलग अलग उसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं, दो प्रकार की जो मुख्य पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नीति नीति का मार कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मतलब ये कि जब भी शरीर को कोई कष्ट होता है तो हमें उससे सेपरेट करके देखना है। केवल कष्ट ही नहीं, जब भी शरीर के अंदर कोई जैसे भूख उठी, अलग अलग चीज़ें उठी, तो हमको अपने शरीर से सेपरेट करके, ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे, ज़रूरी है, लेकिन अगर भूख लग रही है और कोई साधन नहीं है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अपने शरीर से सेपरेट कर सके खुद को, और शरीर अपनी जगह है लेकिन मैं अपनी जगह हूँ। तो ये एक प्रैक्टिस होती है जहाँ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के सुख दुख से मेरा एक संबंध है लेकिन मैं यह सुख दुख नहीं हूँ। तो ये एक आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस बॉडी, ये एक प्रोसेस है। दूसरा, उसी प्रकार से कामनाएं, कामनाओं को, भावनाओं को व्यक्ति देखने लगता है कि तरंगे हैं जो मेरे अंदर उठ रही हैं, और कोई कोई तरंग सुनामी की तरह उठ रही है, और जब वो ऑब्जर्व करने लगता है दृष्टा बन के, तो वो देखता है कि वो आ रही है और ये कहता है मैं ये तरंग नहीं हूँ, मैं ये जो पीड़ित हो रहा है, जो व्यथित हो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जो बड़ा सुखी हो रहा है, मैं यह नहीं हूँ, ये मेरे अंदर होने वाली क्रिया है या मेरे बाहर होने वाली क्रिया है। ये और भी ज़्यादा पावरफुल होता है कि दिस इज नॉट मी, ये एक प्रकृति के किसी कोने में कोई चीज़ हो रही है और वो प्रयास कर रही है मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। तो अगेन आई एम नॉट दिस डिजायर सेल्फ। तीसरा, माइंड के थॉट्स, व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस, तो उसमें कोई कोई विचार हमको बहुत पीड़ित करता है, और उस समय हमको ये बार बार स्मरण दिलाना है कि आई एम नॉट दिस माइंड बट समथिंग मोर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम वही रिनन्सिएशन का ही एक प्रोसेस है जिससे हम इन चीज़ों से अपने स्व को हटा लेते हैं। तो ये जब स्व उससे हट जाता है तो काफ़ी हद तक हम उस सेल्फ के करीब होते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार हम एक साक्षी भाव में, हमारी ईगो एक साक्षी भाव एज्यूम कर लेती है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है नेचर का, और हमको लगता है कि मैं ये हूँ, लेकिन वह पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, अभी भी ईगो ऑपरेटिव है लेकिन वो उससे जुड़ी हुई है। जैसे कुछ लोग जब उनके जीवन में कोई सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बड़ा आसान होता है कहना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो वापस वो ईगो उसके साथ जुड़ जाती है। इसका क्लासिक एग्जांपल मैंने बताया भी है, मेरे एक मित्र का, जो अपने दादा, जब उनकी मृत्यु का समय आ गया था, वो अपने दादा को समझा रहे हैं, आपने तो गीता इतने बार पढ़ी है, आप तो जानते हो कि आप ये शरीर नहीं हो, क्योंकि वो ये सब प्रैक्टिस करते थे। तो वो बेचारे चुप हो गए, मृत्यु सिया पे कौन आर्ग्यू करेगा, उनको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, चले गए। तो रात को इसके सपने में आए और इसको हृदय में वैसी ही पीड़ा होने लगी जैसा वो डिस्क्राइब कर रहे थे। तो एकदम घबरा गए, एक दिन को लगा मृत्यु होने वाली है। फिर सपने में कहते, समझ आया तुझे कि मृत्यु के समय कैसी पीड़ा होती है? तो बड़े आराम से कह रहा था कि मैं ये नहीं हूँ। फिर वो छोड़ के चले गए, मतलब उनका काम था जस्ट उसको ये ज्ञान शिक्षा देना कि भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तू इसको प्रैक्टिस कर, लेकिन दुनिया पर तू खुद अभी इससे ये कहने से व्यक्ति फ्री नहीं हो जाता है। तो फिर उन्होंने उठ के अचानक इतने घबरा गए थे कि श्री अरविंद की एक पुस्तक को निकाल करके खोला, उपनिषद पे व्याख्या, तो सीधा खोला तो वहीं पर निगाह पड़ी। प्रश्न उपनिषद में एक जगह बताया गया है कि नाड़ी एक सतह चेका, 101 नाड़ियों से जो देही है वो देह से बंधा है, ये वो जब नाड़ियाँ टूटती हैं तो मृत्यु के समय वही मृत्यु का दर्द है, पेन ऑफ डेथ, हो कन्फर्म करके श्री अरविंद। तो ये एक होती है कि एक ईगो इसकी कि भाई मैं ये सब नहीं हूँ, सन्यासी को इसकी अहंकार हो जाती है कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे को इन चीज़ों से क्या मोह, मैं इससे मोह नहीं है। ये भी एक प्रकार का मोह है, ये एक प्रकार का अहंकार है कि मेरे अंदर मोह नहीं है, ये भी एक अहंकार है। तो कई बार ऐसी कहानियाँ आप जैन स्टोरीज में सुनेंगे, कहने में बहुत कोई हम भी मुसाफिर हैं, सब मुसाफिर हैं। तो ये एक सच है और एक स्टेप है, लेकिन ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ इसके आगे है। तो फिर कुछ लोग इसके भी आगे जाते हैं, तो जब वो आगे जाते हैं तो उस ल्यूमिनस सेल्फ को प्राप्त करते हैं। उसका लक्षण ये होता है कि स्वतः ही आत्म प्रकाश जागृत होता है जिसमें ज्ञान का उदय होता है। तो ये जो है विटनेस सेल्फ, उसमें ज्ञान का उदय नहीं है। ज्ञान का जब उदय होता है तो एक ऐसे है कि जैसे अब इसको ऐसे देखें कि अंधकार के कमरे से आप बाहर निकल गए, आपने कहा मैं ये अंधकार नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं ये कमरा भी नहीं हूँ, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जब आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश आया क्या अब कमरे के अंदर आपको सब दिखाई देने लगा, आपने देख लिया कि ये सब चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पर, ट्रांजिएंट हैं, जो भी हैं टेम्पररी हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ये होता है ज्ञान। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के साथ एक नया प्रकाश जागृत होता है। अलग अलग उसकी डिग्रीज हैं, लेवल्स हैं, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे, वो बात की बात है। इसीलिए लोग अलग अलग डिग्री पर ये लाइट को प्राप्त करते हैं. तो एनलाइटनमेंट एक बड़ा वेग वर्ड है, पर मुख्यतः ये उस प्रकाश की बात है. फिर दूसरा जो तरीका है वो है पॉजिटिव तरीका. तो ये तो नेगेटिव हो गया कि मैं ये नहीं हूँ. इसमें एक समस्या ये है कि आप उलझ सकते हो अपने विटनेस सेल्फ में और ये समझ सकते हो कि ये सेल्फ है, जबकि वो एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है जो मन के द्वारा सृष्ट होता है. तो दूसरा जो पॉजिटिव तरीका है वो ये है कि सर्वखलविदं ब्रह्मन्, ब्रह्म के ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हैं. श्री अरविंद यही हम देखते हैं अलीपुर जेल में जब वो वॉकिंग करते थे, तो ये मुख्य उनकी जो एक तो ईशावास्य उपनिषद से और ये एक सर्वखलविदं ब्रह्मन्, तो ये करते हुए मेडिटेट करते थे. तो जब ये आइडिया वो थॉट के माध्यम से मेडिटेट करते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, तो धीरे 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 उसका सत्य हमारे सामने प्रकट होने लगता है. किस तरह से? कंसंट्रेशन की पावर से, क्योंकि हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं इस आइडिया के ऊपर. अलग अलग आइडियाज हैं और वो हम लोगों को अलग अलग रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं उसी एक ब्रह्म के. तो जब ये रियलाइजेशन होता है तो उसमें श्री अरविंद बताते हैं चार लेवल्स के रियलाइजेशन है. एक है जब हम ब्रह्म का केवल बाहरी जगत में सर्वखलविदं ब्रह्मन्, तो विराट, तो ये केवल एक ये कारण नहीं है, ये उत्पत्ति का स्रोत भी नहीं है, लेकिन ये जगत है और उसमें एक प्रकार का ब्रह्म का रियलाइजेशन उदय होने लगता है. तो हम इस सब के पीछे, मेटेरियल वर्ल्ड के पीछे उस एक सत्ता को अनुभव करने लगते हैं. पर इसके और हम अंदर जाएंगे, इसका कारण क्या है, मेटेरियल जगत कहाँ से आया, तो हम हिरण्यगर्भ में प्रवेश करते हैं जो इसकी उत्पत्ति का कारण है. कारण मूल कारण नहीं, किंतु वहीं से ये चीज़ें बन करके आती हैं, वो ओरिजिनल फैक्ट्री है जहाँ से बन कर ये मटेरियल यानी एनर्जी में उसमें हम प्रवेश करते हैं, जहाँ पे चीज़ें संयोजित होती हैं फिर बाहरी जगत में आती हैं. फिर अगर इसके भी पीछे हम जाएं कि नहीं मूल स्रोत क्या है, तो हम कॉजल सेल्फ में चले जाते हैं जिसको प्रज्ञा कहा गया. अब कॉजल सेल्फ जो प्रज्ञा है, उसके अंदर जाने के बाद यदि और आगे की, ये बहुत मतलब समझिए कि एक तीन जीवन की पिक्चर 3 मिनट में समराइज हो रही है, तो इंस्टाग्राम की रील है, इसको करना पूरे जीवन का एक ही हो गया, क्योंकि हर लेवल पर बार बार व्यक्ति को उलझाया जाता है. ये कह देना कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, आप एक दिन कहेंगे अगले दिन बॉडी खांसना ओंघना सब शुरू करेगा, बीमारी रोग. उस समय भाई मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, आज मैं काम नहीं, क्योंकि अब शुरू हो गया ना बॉडी ने आपने बहुत कि भाई आई एम नॉट दी. इसीलिए आश्रम में देखिए सब ट्रेनिंग कैसे की जाती है, इसके आप डिपार्टमेंट रेगुलरली जा रहे हो. अब सोचो आप कोई ऑफिस का जॉब है तो आप तो मना कर सकते हो, भगवान का काम है क्या बोलोगे, मामा आज एक्चुअली पता है क्या है, मैं थोड़ा शरीर टूट रहा है, माँ कुछ कहेंगी नहीं, वो करुणामयी है, पर खुद को ही अजीब लग रहा है कि जो मेरे जिस पर्पज से मैं आया हूँ, जिनके स्पर्श से ये सारा बुखार यूं चला जाएगा छू मंतर, मैं उनके ही कर्म में डील कर रहा हूँ, अपने आप आएगा. तो इस प्रकार से या कहीं पर भी है, कोई भी माता जी का काम लिया है किसी ने हाथ में, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड से उसके पीछे ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड से कॉजल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड के परे ट्रांसेंडेंट उसमें प्रवेश कर जाता है व्यक्ति. तो ये चतुष्पाद ब्रह्म. अब इससे क्या होता है कि सेल्फ को हम अलग अलग लेवल्स पर रियलाइज करते हैं. एक है सोल ऑफ मैटर, यानी इस बाहरी जड़ जगत के पीछे एक चेतन है जो जिसकी बात हम लोग पढ़ते हैं सांख्य में, जिस पुरुष की बात की गई, ये जड़ जड़ जगत के पीछे एक चैतन्य अवस्था है जो जड़ जगत को सारा, वो समझिए कि उसके कंट्रोल में है मशीन, वो अगर बटन दबा देता है तो जड़ जगत चलने लगता है. अब इंडिविजुअली व्यक्ति से बाहर हो भी जाए तो भी समस्या होती कि जड़ जगत तो चल रहा है, पर व्यक्ति कहता है मैंने तो उस मशीन दबाने वाले को पा लिया, बटन दबाने वाले को. अब सांख्य में यही ना, वो जो इंटेलिजेंस है पुरुष की वो प्रकृति के अंदर आती है, इसीलिए वो गतिशील होती है, उसी की चेतना से ये सब सचेत होता है, कॉन्शियसनेस की ओरिजिन. इस तरह करते करते सन्यासी क्या करते हैं, वो एकदम एक्सट्रीम फ्लाइट. तो इसमें आप देखिए कई संभावना, एक है एक्सट्रीम फ्लाइट कि नहीं मैं ना विराट पर रुकूंगा, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे जो पुरुष है, ना मैं जो हिरण्यमय के पीछे जो पुरुष है, हिरण्यगर्भ के पीछे, ना मैं प्रज्ञा पर भी रुकूंगा, तो मैं अल्टीमेटली जो उसके परे, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, तूर्य, उस अवस्था में चला जाऊंगा, वही सेल्फ है। एक सेल्फ रियलाइजेशन से ये माना जाता है वो जो अल्टीमेट समाधि, निर्विकल्प, जिसमें आप इन सब चीज़ों के परे चले जाते हैं, तो फिर आप इन सब चीज़ों से कट जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी हैं और इनके अंदर सेल्फ जो है वो भी है, समस्या ये होती है। पर ये एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, ट्रांसेंडेंट जिसको कहा गया मिस्टिक लिटरेचर में। फिर एक दूसरा सेल्फ है जो आप रियलाइज करते हो कि ये सारे जो संसार में, सृष्टि में गति है, जो कुछ हो रहा है, इस सबके पीछे एक सेल्फ है जो इस सबको चला रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एक सेंस ऑफ सेल्फ है। और तीसरा कि जो आपके अंदर, हम स्वयं के अंदर खोजते हैं, संसार के अंदर नहीं, खुद के अंदर, और हम इस सारे अपने अनेकों प्रकार के जो उथल पुथल चल रही है प्रकृति की, उसके पीछे सेल्फ को पाते हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटी निकलती हैं, लेकिन ये सब आधी अधूरी हैं। इसीलिए आप देखें कि कहीं ज्ञान मार्ग में वो कहते हैं सेल्फ हृदय के अंदर स्थित है, और आप उसको वहाँ पे हु एम आई बोल के हार्ट पे कंसंट्रेट करोगे तो आप पा लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सेल्फ को तुम अल्टीमेटली अल्टीमेट ट्रांस में पा सकते हो जब सब चीज़ों से विड्रॉ कर जाओ। तो बात एक ही, वो सेल्फ है, लेकिन उसने अपने आप को कई तरह से वो प्रकट होता है। अब इसमें लोगों ने एक हायरार्की बना ली। हायरार्की क्या बना ली कि जब तक तुम निर्विकल्प को नहीं प्राप्त करते, तब तक तुम्हें वास्तविक रूप से अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये माइंड ने बनाई है, क्योंकि भगवान ने अपने लिए ऐसी हायरार्की नहीं बनाई है, या उस सेल्फ ने। वो वहां भी वैसे ही है जैसा कि वो यहां पर है, शरभाव में भी इट इज द सेम सेल्फ, सेम एब्सोल्यूट, अलग नहीं है। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि सिंथेसिस से उनका अर्थ ये है कि हमको ये जो एक ही सेल्फ है, जो जिसने ये सृष्टि की भी है, सृष्टि से परे भी है, जो हमारे अंदर भी, ही हैज बिकम ऑल दिस, उसको रियलाइज करना है। यानी इसीलिए श्री अरविंद इंटीग्रल नॉलेज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं उस तरह से रियलाइज करेंगे तो हम ट्रांसेंडेंट सेल्फ को तो पा लेंगे, जैसे बुद्ध ने और अंत में कह दिया कि वी कैन से नथिंग अबाउट इट। वास्तव में ही रियलाइज द ट्रांसेंडेंट, और इसीलिए उन्होंने कहा वी कैन से नथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो वास्तव में हर डिस्क्रिप्शन से परे है, वो कॉजेशन के भी परे है। आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो कॉज का कॉज है, वो इन सब उससे परे है। लेकिन फिर जिस लक्ष्य को लेकर ये योग प्रारंभ होता है, इस पृथ्वी के रूपांतरण की, पार्थिव जगत के, ये फुलफिल नहीं होगा। तो सन्यासी फिर क्या कहते हैं, जो कॉस्मिक सेल्फ को रियलाइज करते हैं, वो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? अब बुद्ध के रूप से आप जाओगे पथ से, तो वो अंत में कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, एनर्जी का फ्लो है, स्ट्रीम है, अब बाहर आ जाइए। वो स्ट्रीम क्यों है, कैसे, कहाँ से आई, कहाँ जा रही, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से हमारे अद्वैत तीन कह देते हैं कि ये माया है, एक इल्यूजन है। तो एक और तरीका इसको समझाने का कि ये कैसे बना, ये ईथर से बना। ये थ्योरी एक्चुअली साइंस में लगभग एक्सेप्टेड थी, अभी इसको हालांकि डिस्कार्ड कर दिया गया है, ये फिर आ रही है, क्योंकि बिना उसके बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ सकते। तो ईथर ये सब बनाया, वो कैसे उपमा देते हैं आप पढ़ेंगे, टिपिकली श्री रामकृष्ण परमहंस के जो बहुत सुंदर वो कथामृत है, उसमें आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो क्या कहते हैं, जैसे एक स्वर्ण होता है, कई लोग कहते हैं स्वर्ण है, स्वर्ण एक स्टेबल पार्ट है। अब उसमें से, स्वर्ण में से आप अनेकों प्रकार की चीज़ें बना सकते हो, या मिट्टी है, तो मिट्टी बिकम्स ब्रह्मन, और वो एक उसका जो मूल स्वरूप है, उसमें ईथर के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करती है, जिससे आप अनेकों पात्र बना सकते हो, अनेकों नाम रूप गुण दे सकते हो, लेकिन अंत में वो वस्तुतः मिट्टी ही है, तो बस उस सत्य को पकड़ो। इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फिर इसका क्या प्रयोजन है, ये सब चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड इसमें श्री अरविंद बताते हैं, और अब हम लोग थोड़े से कुछ पैसेजेस पढ़ लेंगे ताकि उससे हम कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर से उसकी और प्रैक्टिस श्री अरविंद हमें बताएंगे, लेकिन रिनन्सिएशन कंसंट्रेशन का बैकग्राउंड उन्होंने बता ही दिया है। नेगेटिव मेथड, पॉजिटिव मेथड इसकी बात हो गई है, दो चार लाइन पढ़ लें। द नेगेटिव मेथड इज टू से ऑलवेज आई एम नॉट द बॉडी, so as to contradict and root out the false idea I am the body. To concentrate on this knowledge and by renunciation of the attachment of the soul to the physical, get rid of the body sense. Sorry, इसके बहुत अवसर मिलते हैं. जब पीड़ा हो, कष्ट हो शरीर में, wonderful opportunity है योग करने की. उस समय कहना है कि I am not this body. और वो धीरे 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 करते करते व्यक्ति उससे अलग हो जाता है. ऐसा नहीं कि उस हिस्से में पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन आप इससे अछूते हो जाते हो. और एक्चुअली वो चीज़ों को ठीक करने में भी बहुत सहायक होती है. पेज 339 है. मैंने ये देखा है, एक्चुअली देखा है कि अगर आप बॉडी से स्वयं को अलग कर लें, एक्चुअल देखा है. एक बहुत बड़ी कोई चीज़ मेरे पाँव पर गिरी थी, चक्का, आई थिंक आई हैव डिस्क्राइब दिस एक्सपीरियंस, प्लेग्राउंड के बाहर. उसको मैं पता नहीं अभिमन्यु की तरह उठाने की चेष्टा कर रहा था, मुझे पता नहीं था इतना भारी है, और मैं अभिमन्यु नहीं हूँ. गिर गया हाथ से छूट करके और सीधा पाँव के ऊपर गिरा. अब उस समय जैसे ही झटका लगा, मैंने कहा आई एम नॉट दिस बॉडी. तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे 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 वो जैसे ही गिरा, गिर के ऐसे उसने जो पाँव को डैमेज करना था फिर साइड में चला गया. उस समय मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सूजन आ रही है, पूरा एकदम प्रोसेस की तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सूजन आ रही धीरे 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 धीरे, सेकेंड्स के अंदर इतना बढ़ गया है. लोग आसपास आ गए, क्या करने का, कुछ नहीं, आराम से घर गया स्कूटर चला के पहुंच करके. पेन ही नहीं हो रहा है, बाद में आया. और तब फिर मैंने आई एम नॉट दिस बॉडी, क्योंकि वो आपको बहुत सारी जो तकलीफ होती है वो क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं उससे, एम्पलीफाई करती है. ऐसे ही बुखार में, कई चीज़ों में अगर आप अपने को सेपरेट करना सीख लें, तो ये आई एम नॉट द बॉडी, ये इवन अपने आप में बहुत बड़ा एक समझिए कि एक इलाज भी है हमारी बहुत सारी व्यथाओं का. ये नहीं कि पूरा क्योर हो जाएगा, हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी हद तक उसके जो इफेक्ट है उसको ब्लंट कर देता है. फिर अगेन वी से अगेन आई एम नॉट द लाइफ, एंड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस नॉलेज एंड रिनंसिएशन ऑफ अटैचमेंट टू द वाइटल मूवमेंट्स एंड डिजायर्स, गेट रिड ऑफ द लाइफ सेंस. पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, भगवान तूने क्या किया, क्यों किया मेरे साथ, ये क्या किया रे दुनिया वाले, नहीं, मैं ये नहीं हूं. ये जो कीड़े की तरह जो छटपटा रहा है, ये जो नाली के कीड़े की तरह वो फिनाइल ढूंढ रहा है, आई एम नॉट दिस. उसमें आप कई लोग थोड़ा एक सेंस ऑफ नोबिलिटी, मैं नहीं हूं जो इस चीज के लिए ऐसे छटपटाऊंगा. तो आप उससे जैसे ही, वो शुरू में एक थोड़ी देर के लिए लगता है अजीब सा, उसके बाद आप एकदम फ्री हो जाते हैं उस चीज से. फिर आती है, ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं आती है, लेकिन वो कमजोर होती चली जाती है, धीरे धीरे वो पूरी तरह छूट जाती है. देन अगेन वी से फाइनली आई एम नॉट द माइंड द मोशन द सेंस द थॉट. तो इस प्रकार से हम मन के इस विकट जाल से, विचारों के जाल से फ्री होते हैं. कई बार लोग कहते हैं कि विचारों को कैसे हम स्टॉप करें. आप उसमें उलझ के नहीं स्टॉप कर सकते. मशीन को रोकना है तो पहले आप उतरिए, उसके बाद आप इसको फाइंड ए लीवरेज आउटसाइड. तो जब हम ये कहते हैं कि आई एम नॉट दीज थॉट्स, तो धीरे धीरे माइंड को माइंड से सेपरेट करना कठिन होता है ज़्यादा, क्योंकि बाकी दोनों में तो माइंड सहायता कर देता है, लेकिन माइंड का माइंड से सेपरेट होना थोड़ा कठिन होता है. पर इवेंचुअली अगर हम प्रयासरत रहें तो माइंड माइंड से सेपरेट हो जाता है. और वहीं पर जो बात हुई कि मन एक सूक्ष्म अहंकार में चला जाता है, पर अब वो बहुत, अगर एक स्टेप और हम लें तो हम अब उसके पार जा सकते हैं. तो आई एम नॉट दिस माइंड. तो वो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा है पॉजिटिव वे. पॉजिटिव से वे में क्या कहना है? आई एम दैट द प्योर द इटर्नल द सेल्फ ब्लिसफुल. मतलब कितना भी व्यक्ति लोट रहा है गंदगी में, पर अपने को कभी विस्मृत नहीं होने दे कि आई एम दैट. हाँ, ये सच है कि मैं इस समय गिर गया हूँ, नाली के अंदर हूँ. मतलब ऐसा नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अगर उस अवस्था में चला भी जाए तो उसको कभी ये विस्मृत नहीं होने देना चाहिए कि आई एम द प्योर सेल्फ. ये एक गंदगी है जो मेरे ऊपर आ गई है, छींटे आ गई हैं, मैं इसमें चला गया हूँ, लेकिन डायमंड तो डायमंड है. तो इसका उदाहरण यह होता है, डायमंड को आप कितने भी गंदगी कीचड़ में फेंक दीजिए, लेकिन है तो डायमंड, और निकलेगा, साफ होगा, तो उसका चरित्र स्वभाव तो बदला नहीं है, उसका मूल्य भी नहीं बदला है. इट इज, तो उसी प्रकार से हमको आई एम दैट. Another positive method belonging rather to the Raj Yoga is to concentrate on the thought of the Brahman and shut out from us all other ideas, so that this dynamo of mind shall cease to work upon our external or varied internal existence. वही विचार जो हमको फंसा रहे हैं उन्हीं विचारों को मोड़ दीजिए और उसमें मंत्र का सहारा लेकर के कि मैं केवल मतलब एक ही विचार को माइंड में चलने दीजिए तो धीरे धीरे वही कुंजी बन जाता है खोलने के लिए द्वार. लेकिन अब शेरविंद वही बताते हैं कि बट द यूनिवर्स इज देयर इज अ ट्रूथ इन गॉड इवन दो द इंडिविजुअल सोल मे हैव शट इट्स आईज टू इट एंड द सेल्फ इज देयर एज द यूनिवर्स इन द यूनिवर्स रियली एंड नॉट फॉल्सली. लेकिन हम तो इससे फ्री हो जाएंगे किंतु जगत भी चलेगा और जगत के अंदर जो सेल्फ है वो भी चलेगा. ये एक मेटाफिजिकल डिस्कशन में शेरविंद बताते हैं कि जो लोग कहते हैं कि देयर इज ओनली वन सेल्फ, ये भी चलता है ना कि एक सेल्फ है या मल्टीपल सेल्फ है. कहते हैं अगर केवल एक सेल्फ है तो किसी एक के अलग होने से यूनिवर्स शुड कोलैप्स, बट इट डजंट हैपन. ये वन ऑफ द रीजन है, और भी कई रीजन है कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल. तो फिर वो कहते हैं कि इस इटर्नल सेल्फ से हम क्या करेंगे जबकि ये सारा जगत चलता जा रहा है, क्या हम इससे विड्रॉ कर जाएं? लेकिन ये हम लोगों को इसकी मनाही है. तो फिर देयरफोर पेज 341 पे अब हम लोग आ जाएंगे क्योंकि अधिकांश पथों में ये कहा जाता है तुम्हें उससे क्या लेना देना, संसार चल रहा है, माया है, चलता रहेगा, तुम बस इससे अलग हो जाओ, और वहाँ पे नॉलेज समाप्त हो जाती है. लेकिन यहाँ श्री अरविंद उस ज्ञान की बात करते हैं यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, जो ब्रह्म का ज्ञान जो आपको इस संसार से अलग नहीं, संसार में भी पहला स्टेप तो वो है कि आपको इससे परे उसको पाना है, लेकिन दूसरा स्टेप है वो कैसे ही संसार के अंदर उसका क्या प्रयोजन है, क्या कर रहा है, उसको भी जानना है. गॉड बियॉन्ड द वर्ल्ड, यस, बट ऑल्सो गॉड इन द वर्ल्ड, गॉड इन वन सेल्फ एंड गॉड इन अदर्स. तो ये एक हर स्टेट में उस सेल्फ को रियलाइज करना है. तो यहां शेरविन कहते हैं आवर व्यू, पेज 341 पर, आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड इंसिस्ट ऑन यूनिटी. The universal self is not different from the perceptive and creative, nor the perceptive from the causal, nor the causal from the absolute, but it is one self being which has become all becomings. So, ये वो चार जो चतुष्पाद ब्रह्म की बात कर रहे थे, शेरविन कह रहे हैं it is the same self, वही है जो story writer है या story writer के पहले भी जो अपने आप में exist कर रहा है. इसको एक story के रूप में देखें कि वो अगर कोई कहानी ना भी लिखते व्यास तो व्यास रहते, कम नहीं हो जाते. फिर अब उनके अंदर कहानी लिखने का भाव जगा तो ये तुरीय अवस्था से व्यास जी आ गए प्रज्ञा में. फिर उसके बाद कहानी उमड़ घुमड़ होने लगी, उसके पात्र बनने लगे, तो अब आ गए वो हिरण्यगर्भ अवस्था में. उसके बाद उन्होंने पेपर पे लिखना शुरू किया. अब पेपर पे लिखना शुरू हो गया तो विराट, जहां वो कंक्रीट हो गई. तो उसी प्रकार, लेकिन वो क्या अलग व्यास है? अगर व्यास से कहें वो वाले व्यास जी जो हैं जो कहानी के पहले थे, वो व्यास जी और ये वाले व्यास जी अलग अलग है ना, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे कैसे मूर्ख हो तुम भैया, मैं तो नहीं कटा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो. तो ये उदाहरण कई बार लोग माँ के साथ भी ऐसे करते हैं कि वो वाली माँ जो वर्ल्ड मदर है, शेरविन ने इस भ्रांति को कई बार करेक्ट किया है कि वो वाली माँ माँ है, माँ के बारे में लिखा है, इन माँ के बारे में थोड़ी कह रहे हैं, ये भी माँ है लेकिन वो वाली माँ. शेरविन स्पष्ट करते हैं नो, दैट इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय ए होस्टाइल आसुरिक माया जो विभक्त कर रही है. तभी वो बार बार कहते हैं द वन हु इज द ट्रांसेंडेंट सुप्रीम शक्ति इज ऑल्सो द यूनिवर्सल महाशक्ति इज ऑल्सो द इंडिविजुअल. तो यहां पर ये विजन इसीलिए श्री कृष्ण विश्व रूप में दिखाते हैं कि यहां पे मैं विभूति के रूप में खड़ा भी हूं, मेरा अपना रोल है, वो मैं प्ले कर रहा हूं तेरे साथ, तेरे सारथी का, पर वास्तव में मैं यूनिवर्सल सेल्फ भी हूं, इधर भी हूं, उधर भी हूं, सब में हूं और इन दोनों के परे भी हूं. तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये संभावना है और उसको रियलाइज करना है, ऑल द थ्री लेवल्स. तो उस इन दैट यूनिटी दैट सेल्फ लॉर्ड ब्रह्मन वी वुड नो दैट वी मे रियलाइज अवर यूनिटी विद इट एंड विद ऑल दैट इट मैनिफेस्ट एंड इन दैट यूनिटी वी वुड लिव फॉर वी डिमांड ऑफ नॉलेज दैट इट शेल यूनाइट. सो नॉलेज का ज्ञान क्या है? ज्ञान तो जोड़ता है. जो जगत को मिथ्या कह दे और ब्रह्म को केवल सत्य कर दे उसने जोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं काट दिया, तोड़ दिया. तो अल्टीमेट यूनिटी क्या है? वर्ल्ड एंड गॉड आर ट्रू एंड वन. तो वो ज्ञान जो हमको अब अगेन ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान की बात नहीं है, वो अनुभव जहां हम इसको अनुभव करते हैं कि वो इसके परे भी है, विश्व भी है और सारे संसार में. ये विजन अर्जुन का विजन है वास्तव में. और जब वो ये तीनों चीजों में देख लेते हैं तब वो कहते हैं मेरे सारे संशय मिट गए, तो अब मैं जो तुम कहोगे वो मैं करने को प्रस्तुत हूं. Therefore, our integral yoga will take up these various disciplines and concentrations, but harmonize and, if possible, fuse them by a synthesis which removes their mutual exclusions. कैसे harmonize करेंगे? We can start by that कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भगवान है, मैं वास्तव में divine self हूँ. लेकिन कैसे फ्यूज करेंगे? लेकिन मैं ही नहीं हूं, तत्त्वमसि, तुम भी सारे. एक बड़ा सुंदर माता जी का भी एक्सपीरियंस है, वो कहती हैं ऑल बॉडीज आर वन बॉडी. पर नौलनिदा के पास कोई गए थे अपनी वाइफ के साथ, नौलनिदा अचानक बोलते हैं, बर्थडे का दिन था, तो नौलनिदा चुप रहे, फिर कहते हैं, यू नो दिस बॉडी, दिस योर बॉडी and that body, we are all one body. तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस बॉडी के प्रति neglect कर रहे हैं, नहीं, ये हमें काम दिया गया है. लेकिन ये वास्तव में एक लार्ज और इसके बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. ये मैं आश्रम में कई बार ये बात होती है, मैं कहता हूँ कि आश्रम में डिपार्टमेंट एक कन्वीनियंस है, ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को अलग करके देखने लगोगे तो समस्या है, वो विभक्त चेतना है. सारे डिपार्टमेंट एक ही आश्रम का हिस्सा है. अभी आज ही किसने ये भी प्रश्न किया ऑरोविल के विषय में, सारा जो हो रहा है इसका क्या समाधान है. हमको लगता था प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि कोई जो समस्या थी लगता है कि वो चली गई, लेकिन समस्या वापस आ गई, तो क्या करा जाए. तो मैंने बताया कि जहां तक मैं समझता हूँ कि ये समस्या का जो मूल है वो जब ऑरोविल ने अपनी माता का परित्याग कर दिया, अपने पेरेंट्स का परित्याग कर दिया, और पेरेंट की जगह उसने गवर्नमेंट को लाके बिठाल दिया. यही हुआ था. ऑरोविल ने एक समय आश्रम से कोई लेना देना नहीं, डिवाइन मदर वो एक इम्पर्सनल सत्ता है और हम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, मतलब कहते हैं ना, घोषित कर दिया हम क्वीन को नहीं मानते. वो अमेरिकन मूवमेंट से बड़े इंस्पायर्ड होकर के, तो आई सेड ये तो आपकी मूल दोष हो गया, दिस इज द ओरिजिनल एरर. और अब उसकी जगह, लेकिन आप हैंडल नहीं कर पाए, नेचुरल है, तो आपने क्या किया, लड़ाई झगड़े में गवर्नमेंट को ले आए. क्यों? काटने के लिए. सोसाइटी से हम, कोई हमको नहीं काट सकता जब तक कोई सपोर्ट ना दे. जैसे पाकिस्तान भारत से लड़ते लड़ते अमेरिका और चीन को बुला लाया, अब उनका वासल स्टेट हो गया. नतीजा क्या है? विभक्त हो गया. तो यही चीज हुई ऑरोविल में कि सोसाइटी से, और सोसाइटी स्वयं माने एस्टेब्लिश की थी, करते करते उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को ले लिया खुद को सपोर्ट किया. गवर्नमेंट एक पावरफुल एंटिटी है, करा गवर्नमेंट ने सपोर्ट, लेकिन अब उसका नतीजा यह है कि भाई गवर्नमेंट तो फिर अपने हिसाब से चलाएगी, उसको ऑरोविल के आइडियल से क्या लेना देना है, वो तो पेपर है उसके लिए. तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करें. मैंने कहा वापस जाओ पेरेंट के पास, जुड़ो फिर से माँ से, माँ का नाम जप करो, अपने हृदय में माँ को जगह दो, ये मानो कि हम माँ के बच्चे हैं और ये माँ की भूमि है. आप तो अगर नहीं करोगे तो ये तो और एबिस की ओर, आज एक चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट का ऑफिसर, कोई और आ जाएगा, समस्या वही रहेगी, क्योंकि आपका मूल जो एरर है वो इस सेपरेशन से है। तो ऑफ कोर्स जिन्होंने ये मैसेज किया था कहा इस पर हमको और विचार करना चाहिए एक दिन बैठ करके, मैंने कहा करना चाहिए, ऑरविल वालों को करना चाहिए। गवर्नमेंट को तो ऑरविल लाई थी, तो वो शुरू में आपको सब्ज बाग दिखाए, बहुत अच्छा लगा कि हमको काट दिया उनसे, आपने काट लिया पर आप किसके हो गए, गवर्नमेंट के हो गए। अब आपको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का होना क्या होता है। तो नाउ हाउ विल यू गो बैक, यू कांट टेल गवर्नमेंट की नो यू कम, बट अगर माँ को आप स्मरण करोगे, समर्पण करोगे सच्चे दिल से, तो शी विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू, देयर इज नो अदर वे। अगर कोई पूछे तो इस समस्या का समाधान यही, क्योंकि ओरिजिन वही है। तो यहां पर ये जो प्रवृत्ति होती है कि जब हम काट लेते हैं अपने आप को जगत से, तो इंटीग्रल योगा में इस सब चीजों को लेकर हार्मोनाइज करना है। Not realizing the Lord and the All, only to reject them for silent self or unknowable absolute, as would an exclusively transcendental, nor living for the Lord alone or in the All alone, as would an exclusively theistic or an exclusively pantheistic yoga. The seeker of integral knowledge will limit himself neither in his thought nor in his practice nor in his realization by any religious creed or philosophical dogma. तो कोई पूछे भाई कौन है, वेदांतिन हो ये हो, नहीं हम तो क्योंकि ये सब अंत में जाके कहीं ना कहीं संसार और जगत में भेद कर देते हैं, नॉट इन द ओरिजिनल योगा ऑफ श्री कृष्णा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि श्री कृष्ण और उनके पहले का जो भारत है, उनके बाद का भी भारत, लेकिन बुद्धिज्म और शंकराचार्य के पहले, That Bharat has to come back. क्योंकि उसके पास ये ज्ञान था। He will seek the truth of existence in its completeness. The ancient disciplines he will not reject, for they rest upon eternal truth, but he will give them an orientation in conformity with his aim. क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग है, तो हम स्वीकार करेंगे जैसे I am not the body, जिसकी बात हुई कि हम body से चिपक जाना, जुड़े रहना, ऑल लाइफ इज योगा, मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी जो कर रहे हैं योग के नाम पर, ये इसका अर्थ नहीं है बिल्कुल भी कि हम जो भी करेंगे हम कह देंगे ऑल लाइफ इज योगा। इट हैज टू बी टर्न्ड इनटू योगा, जीवन की हर गति योग बन सकती है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट आर प्राइमरी एम इन नॉलेज मस्ट बी टू रियलाइज अवर ओन सुप्रीम सेल्फ मोर देन दैट सेल्फ इन अदर्स और एज द लॉर्ड ऑफ नेचर और एज द ऑल, फॉर दैट इज द प्रेसिंग नीड ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे पहले हमको अपने ही स्व के उच्चतम ट्रुथ को प्राप्त करना है। ये एक हालांकि सिंथेसिस में श्री अरविंद कहते हैं वी कैन स्टार्ट विद द वर्ल्ड और वी कैन स्टार्ट विद अवर सेल्फ, पर ये आसान है, ये हर जगह अवेलेबल है आपको। वर्ल्ड के थ्रू अगर आप कोई शांत जगह पर हैं और उस वातावरण के पीछे जाके आप ढूंढ रहे हैं, यू विल डिस्कवर इट। लेकिन खुद को तो हर जगह कैरी कर रहे हैं, तो अपने ही सब्जेक्टिव स्पेस में जाके हुए माई, ये पहली आवश्यकता है। बट वी डू दिस नॉट इन ऑर्डर टू डिसअपियर इन टू इट्स सोर्स, बट सो दैट अवर होल एग्जिस्टेंस एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस इनर किंगडम मे फाइंड द राइट बेसिस। तो हम क्यों डिस्कवर करना चाहते हैं अपने सच्चे स्व को, ताकि हम संसार के साथ सच्चा संबंध जोड़ सके। अभी जो हमारा संबंध है वो ईगो के आधार पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम सुख दुख पीड़ा संबंधों में विच्छेद या नाना प्रकार के जो लड़ाई झगड़े जो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ईगो है। लेकिन अगर हम सच्चे सेल्फ को रियलाइज करके उसके आधार पर संबंध जोड़ते हैं, तो हम क्या किसी से हर्ट होंगे, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि हम अपने अंदर भी उस अवस्था में हैं जहाँ यू नो पास्ट बियॉन्ड ग्रीफ तत्र को मोह का शोका, और उसके अंदर भी कि ये वो नहीं कह रहा है, ये तो उसका एक बाहरी व्यक्तित्व छोटा सा, जो बेचारा खुद ही, तब तो करुणा आएगी कि ये बेचारा मुझ पे जो क्रोधित हो रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मुझे तो इसका प्रभाव नहीं, पर ये बेचारा कितनी पीड़ा में है, कितने कष्ट में है, कितना बिटर है, तो आप क्रोध का रिएक्शन नहीं आएगा, आपके अंदर करुणा जागेगी। तो ये जो रीओरिएंटेशन हो जाता है संसार के साथ, क्योंकि हम अपने सच्चे स्व को प्राप्त कर लेते हैं, और यही उसका प्रयोजन है। वी मे लिव इन अवर हाइएस्ट सेल्फ, लिव फॉर अवर हाइएस्ट सेल्फ ओनली, एंड ओबे नो अदर लॉ देन दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम अवर हाइएस्ट सेल्फ, and is given to our purified being without any falsification in the transmitting mentality. मतलब real life की dealing का एक उदाहरण ले सकते हैं. कोई आप पर क्रोधित हुआ या उसने आपको अनाप शनाप कहा, गाली गलौज की या गुस्सा हुआ, तो ordinary dealing में हम कहें ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते. पर एक मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे. पर अब मान लीजिए यहाँ आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आप अंत में क्या सोचते हैं अगर रियली आप योग के पथ पर हैं, तो माँ के बच्चे हैं, तो माँ के बच्चे. अरे ठीक है मेरी माँ है, उसकी भी माँ है, तो आप बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं. ये एक इट्स स्टिल इन इग्नोरेंस बट एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब जब इस ट्रुथ को हम रियलाइज करते हैं पूरी सृष्टि के अंदर, पेड़ पौधे पत्ते पशु पक्षी देसी विदेशी, तो ये नहीं कि हम उनका बाहरी प्रकृति नहीं उसको देख रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी प्रकार की घृणा इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी ये भाव नहीं जागेंगे कि भाई उनके अंदर भगवान अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहा है. आई हैव टू बी ट्रू टू माई ओन हाइएस्ट सेल्फ, ये बता रहे हैं, आई हैव टू लिव फॉर माई ओन हाइएस्ट सेल्फ. लेकिन उसमें कहीं भी कोई नकारात्मक सोच का नकारात्मक भाव का कहीं भी स्थान नहीं होगा. तो मेरा जो हाइएस्ट सेल्फ है मुझे उसके अनुसार, लेकिन संसार में हर किसी को भगवान अपने रास्ते अपने ढंग से ले जा रहे हैं, तो वह मैं इंटरफियर नहीं करूंगा. इसको गीता में भी श्री कृष्ण बड़े अच्छे अच्छे ढंग से कहते हैं कि बुद्धि भेद नहीं करता है जो ज्ञान को प्राप्त करता है दूसरों में. जैसे अगर आप आश्रम चले आए, यह आपकी नियति हो सकती है, पर अगर आप सबको बोलोगे नहीं नहीं आश्रम आ जाओ, अगर आश्रम नहीं आए तो तुम योग नहीं कर रहे हो, ये तो मूर्खता वाली बात है. मानो जो भी आश्रम में आ गया वो योग कर रहा है, ये एक सीमित मेंटेलिटी होती है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी को भगवान अपने ढंग से अपने रास्ते से, फिर सारे मतभेद अननेसेसरी झगड़े होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो रोल है जो स्टेज है उस हिसाब से भगवान उसको ले जा रहे हैं. तो ये चीज अंदर में प्रकट होने लगते हैं. एंड इफ वी डू दिस राइटली वी शैल डिस्कवर दैट इन फाइंडिंग दिस सुप्रीम सेल्फ वी हैव फाउंड द वन सेल्फ इन ऑल द वन लॉर्ड ऑफ आर नेचर एंड ऑफ ऑल नेचर द ऑल ऑफ आर सेल्स हु इज द ऑल ऑफ द यूनिवर्स. तो समग्र समग्र माम उसका रियलाइजेशन अपने आप स्वतः ही हो जाता है कि वह जो हमारे अंदर है वही सबके अंदर है, और जो सबके अंदर है और मेरे अंदर भी है, जो सुप्रीम एब्सोल्यूट है वो भी ये सब बन गया है. तो ये स्वतः ही इसका रियलाइजेशन हो जाता है. By discovering and using rightly the truth of our being, the barrier between our individuality and the universe will necessarily be forced open and cast away, and the truth that we realize in our own being cannot fail to realize itself to us in the universality which will then be our self. अब ये practical implication है इसके. देखने पढ़ने से लगता है बहुत metaphysical कठिन. अब देखिए आप जब realize कर रहे हैं कि वो अगला व्यक्ति भी वास्तव में डिवाइन मदर का स्वरूप है, एक रूप है, तो अगर आप इस चीज इस भाव में जिएंगे प्रभावित नहीं होंगे बाहरी चेतना से, तो आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा. बिकॉज यू आर इम्पोजिंग दिस हायर ट्रूथ, वो भी रियलाइज करने लगेगा. इसीलिए लोग कहते हैं कि एक जो सच्चा योगी होता है उसके एक तो है द टाइगर डज नॉट अटैक द योगी, दूसरा है कि योग के वातावरण में चीजें पीसफुली रहने लगती हैं, क्योंकि ये जितना आप बाहरी चेतना में रहेंगे उतनी क्वारल्स होंगी, और जितना आप आंतरिक चेतना के सत्य में अपने सत्य में जब हम रहने लगते हैं तो दूसरों के अंदर भी उसी सत्य को उजागर करते हैं. तो ये जो श्री अरविंद बता रहे हैं ये वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं और बड़ी अर्जेंट नेसेसिटी है इसकी. तो सही है कि वो सेंटेंस पढ़ के थोड़ा आप शेरविंद महागंगा अवतरण कर रहे हैं, पर उसका जो इम्प्लीकेशन यही है कि आपको गंगा के अवतरण की कहानी समझ आए ना समझ आए, नहाने से तो आपके आनंद आते ही आता है. तो ये है रियलाइजिंग इन आवर सेल्स द आई एम ही अहम ब्रह्मास्मि ऑफ द वेदांत वी कैनॉट बट रियलाइज इन लुकिंग अपॉन ऑल अराउंड अस द आइडेंटिकल नॉलेज ऑन इट्स अदर साइड दाउ आर्ट दैट. अब यही तो शेरविंद का एक्सपीरियंस है अलीपुर जेल में, जिससे वो पूरा प्रारंभ करते अपनी यात्रा. अब सोचिए कोई विकट से विकट परिस्थिति में आदमी फंस गया है, मतलब आप छोड़ो कल्पना भी क्यों करें हम ऐसी चीजें, लेकिन कल्पना करें आदमी की ऐसी परिस्थिति जहां से लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये कहेगा ना परिस्थितियों के पीछे, अगर वो कहे भगवान ही है, सब तुम्हारी लीला है, तुम्हारा खेल है, तुम्हें ही मैं समर्पण कर रहा हूं क्योंकि तुम ही ये सब कुछ हो. अब देखिए वो एक नई चीज एक्ट करने लगती है. माँ इसको कहती है हायर डिटर्मिनिज्म बिगिंस टू एक्ट. और मैंने तो इसके कई प्रमाण देखे हैं. हायर डिटर्मिनिज्म बिगिंस टू एक्ट और वो चीज़ों के फिक्स्ड कोर्स को बदल देती है. अब उसकी जो साइंस है वो एक अलग है जिसकी अभी चर्चा नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अद्भुत बात है कि मैं ही नहीं हूँ यह सब कुछ जो मेरे चार. एक तो होता है कि मैं हूँ, मेरे अंदर भगवान है, मैंने प्राप्त, बाहर जो हो रहा है होने दो, जल जाएगा, ये हो जाए. लेकिन एक दूसरा यह भी भगवान है, बहुत पावरफुल है वो, कि वो चीजों के अंदर कंपेल करने लगता है उनको अपने सत्य को डिस्क्लोज करने के लिए. जैसे कोई बहरूपी आपके पास आ जाए और वो डराने लगे, कहे मैं देखो भूत, लोग मास्क उस्क लगा के डराते हैं ना, तो आप एक तो डर जाते हो, दूसरा को अरे छोड़ो यार तो और मैं एक ही जैसे हैं, उतार इसको, तो भागेगा आपसे, कहे पहचान लिया, हाँ पहचान लिया, आप डरोगे नहीं क्योंकि आपको पता है ये मास्क पहने हुए. तो उसी प्रकार से हम संसार से जो विभ्रमित होते हैं, जिसके कारण हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जब हम ये जानने लगते हैं कि ऑल दिस इज द वन सेल्फ, सेम सेल्फ जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर, तो भय का कोई स्थान नहीं होता. इसीलिए कहा गया है आध्यात्मिक लिटरेचर में कि जो प्राप्त कर लेता ब्रह्म को उसकी एक पहचान ही होती, निर्भयो, भय नहीं होता उसके अंदर. क्यों भय नहीं होता? जुगुप्सा नहीं होती, किसी से भागता नहीं है. क्यों नहीं भागता है? क्योंकि जो हर चीज के अंदर पा रहा है उसको, तो किससे भागेगा? इस परम सत्य के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे. वी हैव ओनली टू सी हाउ प्रैक्टिकली द डिसिप्लिन मस्ट बी कंडक्टेड इन ऑर्डर दैट वी मे अराइव सक्सेसफुली एट दिस ग्रेट यूनिफिकेशन. तो स्टेप बाय स्टेप्स इसमें श्री अरविंद हम लोगों को प्रैक्टिस उस सेंस में देने की जगह उसके जो मूल सिद्धांत हैं वो बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर. प्रैक्टिस तो हम लोगों को करना है, उसको अडेप्ट करना है, लेकिन मूल सिद्धांत वो बता देते हैं. जय माँ.